ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों घाना, त्रिनिदादो टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा पर आज सवेरे रवाना हुए। पिछले 30 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली घाना यात्रा है। अपने प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घाना ग्लोबल साउथ में भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी है। उन्होंने कहा कि अफ्रीकी संघ तथा पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। घाना में भारतीय उच्चायुक्त मनीष गुप्ता ने आकाशवाणी संवाददाता के साथ विशेष साक्षात्कार में भारत घाना संबंधों के विभिन्न पहलुओं को रेखांकित किया।
India Ghana ties, they are quite multifaceted. They are very deep rooted with a rich historical legacy. We have a very good developmental partnership from this country. This is a very diversified relationship that encompasses all sectors from agriculture to manufacturing to R&D, steel to pharmaceuticals to IT. This visit is taking place and we are certainly confident that is going to take this relationship to the greater heights.
उच्चायुक्त ने बताया कि भारत ने घाना के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जॉन महामा के शासन में दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण संबंधों में निरंतरता बनाए रखने का प्रयास किया है। घाना के बाद श्री मोदी कल त्रिनिदाद और टोबैगो जाएंगे। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री अर्जेंटीना जाएंगे। पिछले 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना की यह पहली यात्रा है। ब्राजील में श्री मोदी रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी नामीबिया जाएंगे। क्वाड संगठन के सदस्य देशों ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों, षड्यंत्रकर्ताओं और धन उपलब्ध कराने वालों को तुरंत दंडित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से सहयोग करने का आह्वान किया है। वाशिंगटन डीसी में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के संयुक्त बयान में पहलगाम आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। बैठक में सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा की गई। क्वाड विदेश मंत्रियों ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने कहा है कि कोविड के टीकों और युवाओं की अचानक होने वाली मौतों के बीच कोई संबंध नहीं है। देश के दो प्रमुख चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों के व्यापक अध्ययनों में पुष्टि हुई है कि भारत में इस्तेमाल हुए कोविड के टीके सुरक्षित और प्रभावी रहे हैं। इनके गंभीर दुष्प्रभावों के बहुत कम मामले मिले हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ओडिशा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को अनुसूचित जाति के दो व्यक्तियों पर कथित अत्याचार के मामले में नोटिस जारी किया है। खबरों में बताया गया है कि ओडिशा में कुछ लोगों द्वारा मवेशियों की तस्करी करने के संदेह में अनुसूचित जाति के दो लोगों की पिटाई की गई और उन्हें गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। आयोग ने मामले में दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों सहित उत्तर और मध्य भारत में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की स्थिति रहेगी। पूर्वी भारत के अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा में आज इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश जारी है। मानसून के दौरान अब तक बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में 51 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अब भी लापता हैं। एक रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला मानसून की वर्षा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहां के कई क्षेत्रों में बादल फटने, बाढ़ जैसी घटनाओं से 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जबकि 34 लोग लापता हैं। थुनाग उपमंडल में सड़कों की हालत बेहद खराब है जिससे राहत सामग्री पहुंचाना मुश्किल हो गया है। मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना से आग्रह किया है कि हवाई मार्ग से राशन, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जाए। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में 4 जुलाई तक भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
भारत और इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला के दूसरे टेस्ट मैच में आज इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक बर्मिंघम में भारत ने बिना किसी नुकसान के 14 रन बना लिए हैं। भारत ने अपनी एकादश टीम में 3 बदलाव किए हैं जबकि इंग्लैंड की टीम ने कोई बदलाव नहीं किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।